नमस्कार श्रोताओं, छिंदवाड़ा वालन से आपका दोस्त योगेश। जिस तरीके से बीते 1.5 साल से कोरोना महामारी से प्रत्येक व्यक्ति परेशान है और हाल ही में सरकार ने रासायनिक खादों के भाव आसमान पर बढ़ा दिए हैं, चाहे कोरोना काल से किसानों की फसलें बेचने को लेकर भी किसानों को लाइन में लगना पड़ा है। साथ ही किसानों को न अपने भाव समय पर मिल पा रहे हैं और कुछ दिनों पूर्व ही पेट्रोल डीजल के दाम भी बढ़ाए गए हैं और खेती में दौड़ने वाले ट्रैक्टर में 90 रुपये से ऊपर डीजल यूज किया जा रहा है। किसानों पर अतिरिक्त बोझ बढ़ रहा है और बीते वर्ष आई बाढ़ ने कई किसानों की फसलें भी तबाह कर दी है और वर्तमान में जिस तरीके से रासायनिक खादों के दाम निरंतर बढ़ते जा रहे हैं और सरकार ने बढ़ाए भी है। आज हमारे साथ में एक जनप्रतिनिधि एवं किसान संदीप जी बकने जुड़े हुए। संदीप जी, मोबाइल आने में स्वागत सर आपका।
नमस्कार योगेश जी।
सर, किस तरीके से देख रहे सरकार ने इस रासायनिक खादों के नियंत्रण के लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए और किसानों की समस्या निरंतर बढ़ती जा रही है, इस कोरोना काल में भी निरंतर बढ़ती जा रही है?
योगेश जी, विगत 2-3 वर्षों से किसान किस तरह से परेशान है आप और हम सब लोग जानते हैं। सरकारों ने किसानों से वादा किया था कि उनकी इनकम, उनकी फसलों के दाम दुगने होंगे, उनको उचित फसलों को उचित मूल्य मिलेगा, समर्थन मूल्य मिलेगा, पर जिस तरह से प्रकृति का मार और सरकार की मार किसान सहन कर रहा है और इस पूरे आपदा में किसान एक ऐसा व्यक्ति है जिन्होंने अन्न की पूर्ति पूरे विश्व की है, पर सरकारें केवल चुनाव में किसानों के लिए लोक लुभावन वादे तो करते हैं पर किसानों के हित के फैसले नहीं लेते। आज किसान से लेकर हर व्यक्ति परेशान है क्योंकि जिस तरह से सरकार ने किसानों के बीच खाद के भाव बढ़ाए हैं, एक तो 3 वर्षों से उनके फसलों को उचित दाम नहीं मिल रहा है, कर्जे के बोझ के तले किसान दबा हुआ है और ऊपर से जो डीएपी हम देखते थे विगत वर्ष 1200 रुपए में जो डीएपी की बोरी मिलती थी, आज वो किसानों को 1900 रुपए और 1700 रुपए के दाम ऊंचे दाम में लेना पड़ रहा है। वही जो बीज है, बीज के भी दाम आसमान छू रहे हैं। किसान तो परेशान है ही है, आम व्यक्ति गृहिणी खाद्य तेलों के भाव बढ़े हुए हैं, दालों के भाव 150 रुपए हो गए, खाद्य तेल 160 रुपए लीटर हो गया है, पेट्रोल डीजल के भाव आसमान छू रहे हैं और आम व्यक्ति से लेके किसान पूरी तरह से परेशान है। सरकार चाहे तो टैक्स में कटौती करके और सब्सिडी देके किसानों को राहत पहुंचा सकती है, पर इसके लिए सरकार की मंशा होना जरूरी है।
जी सर, जिस तरीके से 1.5 साल से कोरोना संक्रमण हमारे बीच में है और सभी लोग अपने घरों में, लेकिन किसान अपने खेतों में कार्य कर रहे हैं और लोगों को अन्न उत्पादन कर रहे हैं, अन्न पहुंचा रहे हैं, तभी लोग घरों में रहकर अपना पेट भर रहे हैं। लेकिन सर, इस तरीके की जो समस्याएं सामने आ रही है, कई किसान ऐसे हैं जिनकी खेत की फसल बाजार तक नहीं पहुंच पा रही है, बाजार बंद है, तो किसान अपने पशुओं को उस फसलों को खिला रहे हैं। सर, ऐसे समय में अब किसानों की आजीविका किस तरीके से चले और सरकार ने इसके लिए क्या कदम उठाए जाए?
सरकारी कदम उठा सकती है। सरकार ने उद्योगपतियों के कर्जे माफ कर दिए, उद्योगपतियों को बहुत सारी टैक्स में छूट दी है, उसी प्रकार किसान और खेती को एक उद्योग का दर्जा देके और उनके फसलों को उचित दाम देके, समर्थन मूल्य उनका बढ़ा के या उनको उचित बाजार उपलब्ध करके किसानों की फसल को दाम दे सकते हैं और किसानों की हालत सुधार सकते हैं। आज पूरे विश्व में सारे उद्योग धंधे बंद है, सारे कारखाने बंद है, व्यक्ति घरों में रह के केवल खाना खा रहा है और भोजन कर रहा है और जीवित रह रहा है, तो वो केवल किसान के भरोसे। पूरे विश्व को किसान ही अन्न पुरा रहा है। तो सबसे पहली जिम्मेदारी आप और हम तो कुछ नहीं कर सकते, पर सरकार और शासन किसानों के लिए एक योजनाबद्ध तरीके से उनकी फसलों को उचित दाम दे सकते हैं, उनको सब्सिडी में खाद उपलब्ध करा सकते हैं, उनको सब्सिडी देके उनको बीज उपलब्ध करा सकते हैं, उनका कर्जा माफ करके उनके ऊपर का जो बोझ कर्जे का है वो उतार सकते हैं और आने वाले दिनों में फसल बोने के लिए जो उनको कर्जा बैंक से लेना पड़ता है वो कम से कम बिना ब्याज का उनको दिला के उनको राहत दिला सकते हैं।
जी सर, वर्तमान में बीते 1.5 साल से कोरोना संक्रमण है, केवल किसानी खेती किसानी के द्वारा ही अर्थव्यवस्था कुछ हद तक टिकी हुई है। अब वर्तमान में ऐसा लग रहा है कि खेती किसानी भी अब इस खाद और अन्य जो वस्तुएं जो बढ़ रही है, इससे कुछ अर्थव्यवस्था पर भी कुछ असर पड़ेगा।
अर्थव्यवस्था पे बिल्कुल असर पड़ेगा, पर किसानों की व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त हो गई है। आप देखा होगा योगेश जी, विगत 10 वर्षों से हमारे क्षेत्र में कपास की फसल होती है, पर 5,000 से 6,000 रुपया मूल्य ही उनको विगत 10 वर्षों से मैं देखते आ रहा हूँ कि प्रति क्विंटल भाव मिलता है। जबकि खाद पहले DAP 500 रुपये बोरी मिलती थी, फिर 900 रुपये बोरी मिलने लगी, फिर 1,200 रुपये हुई, और आज 1,900 रुपये बोरी हो गई इन 4-5 वर्षों में। पर फसल के जो दाम है प्रति क्विंटल, जहाँ के वहाँ ही है, वही है। गेहूं आज 2,000 रुपये क्विंटल ही बिकता है, कपास 5, 5.5, 6 हजार रुपये क्विंटल ही बिकता है। तो किसानों को राहत, सरकारें इनका समर्थन मूल्य बढ़ा के इनको बहुत सारी राहत दे सकती है। और किसान ही एक ऐसा है जो पूरे विश्व को पाल रहा है, और किसान और खेती को दुगना किसानों को लाभ का धंधा बनाने का सारी सरकारें सरकारों को आश्वासन है, वो वादा सरकारों ने पूरा करना चाहिए।
जी सर, बीते 10 सालों से रासायनिक खादों के भाव 4 गुना तक बढ़ गए हैं, लेकिन सर खेती किसानी की जो फसलें उत्पादन होकर जो बाजार में जाती है उनके भाव केवल नहीं बढ़ पा रहे हैं, इसका क्या कारण है?
सरकार की उदासीनता है। सरकार उद्योगपतियों को साथ देती है, बड़े बड़े उद्योगों को साथ देती है, और किसान इस जबकि 70% इकोनॉमी अर्थव्यवस्था किसानी पे आधारित है भारत देश की, पर किसान यहाँ का संगठित नहीं है। यहाँ भारत का किसान अशिक्षित किसान है, ग्रामीण क्षेत्र का किसान होने के कारण वो अपने अधिकारों को नहीं समझ पाता और संगठित रूप से अपनी आवाज नहीं उठा पाता, इसलिए सरकारें उनका दमन करती है। और सरकार की उदासीनता के कारण ही आज हमारे देश का किसान पिछड़ा हुआ है। सरकारें उचित योजनाएं किसानों के लिए करें, और जो इस देश की अर्थव्यवस्था किसान मजबूत करता है, उस किसान को मजबूत करे तो इस देश की अर्थव्यवस्था भी बहुत अच्छी मजबूत हो जाएगी। ये सरकारों ने इसको प्राथमिकता के साथ ध्यान देके और खेती किसानी के उत्पादन बढ़ाना चाहिए, और किसानों के फसलों को उचित दाम मिले इसकी व्यवस्था सरकारों ने करना चाहिए।
रासायनिक खाद वितरण में कपास की फसलों का समावेश नहीं है सर, कि जिस तरीके से रासायनिक खाद केवल कपास उत्पादन के लिए नहीं किया जा रहा है, इसमें सम्मिलित नहीं किया गया है, और हमारे क्षेत्र छिंदवाड़ा जिले में कपास उत्पादन में सौसर तहसील और पांडुर्णा तहसील दोनों ही कपास उत्पादन में अव्वल है सर, किस तरीके से देख रहे हैं? सफेद सोने के नाम से जाना जाता है।
हमारा जो जिला सरकार, जिला जिला प्रशासन होता है, स्थानीय जो नेता है, उन स्थानीय नेताओं ने जिला प्रशासन को सूचित करके जिला प्रशासन के माध्यम से केंद्र शासन तक और मध्य प्रदेश शासन तक इस बात को पहुंचाना चाहिए कि जो क्षेत्रीय फसलें होती है, कुछ कुछ फसलें ऐसी होती है कि कुछ क्षेत्र में होती है, कुछ क्षेत्र में नहीं होती है। कुछ क्षेत्रों में हमारे यहाँ धान होता है, कुछ क्षेत्रों में सोयाबीन होती है, कुछ क्षेत्र में मूंगफली होती है, कुछ क्षेत्रों में संतरा होता है। पूरे मध्य प्रदेश में संतरा नहीं होता, पर हमारे जो हमारा जो क्षेत्र है वहां संतरा होता है, कपास होता है। तो ये ध्यान आकर्षण का काम यहाँ के स्थानीय नेताओं ने जिला प्रशासन के माध्यम से शासन के नॉलेज में लाना चाहिए, और उसको कपास की फसल को बहुत उसमें सम्मिलित करना चाहिए।
जी सर, जिस तरीके से बीते 10 सालों में जिस तरीके से 2009 और 10 में DAP के दाम 486 और एमपीके के दाम 364 रुपये थे सर, इसका क्या अनुपात है कि इस तरीके से जो 10 सालों में कितने गुना तक बढ़ गया है, तो इसको कौन सा आकलन किया जा रहा है सरकार द्वारा ताकि ये भाव बढ़ रहे हैं?
व्यापारी और उद्योगपति की मनमानी है। सरकारों द्वारा व्यापारी और उद्योगपतियों को खुली छूट दे के रखी है, उनपे उनके मिनिमम प्राइस पे कोई सरकार का नियंत्रण नहीं है, और सारा नियंत्रण किसानों के फसलों पे है। 2,000 रुपये क्विंटल गेहूं हम कई दिनों से देखते आ रहे हैं, 1,800 और 2,000 रुपये क्विंटल का ही गेहूं बिकता है, जबकि किसी किसान को नहीं पूरा था गेहूं 2,000 रुपये क्विंटल बेचना, 6,000 रुपये 5,000 रुपये क्विंटल कपास बिकता है। तो ये सारी उदासीनता के सरकारों की है। शासन नहीं चाहता कि किसान के फसलों को भाव मिले, वो उद्योगपतियों की सरकार है, क्योंकि उनको पैसा लेना है सरकार चलाने के लिए, राजनीति करने के लिए, और अपने अपना अपना भला करने के लिए। तो ये नेता, इस देश के जो नेता है, और जो जनता है, जनता ऐसे नेताओं को चुनना चाहिए जो किसानों की हित की, जो आम व्यक्ति की हित का फैसला ले। जब आप एक उद्योगपति को, जिस उद्योगपति को आवश्यकता नहीं होती कि उसको किसी प्रकार की आर्थिक सहायता की जाए, उस उद्योगपति को सरकार सहयोग करती है, और एक किसान बेचारा जो दिन रात मेहनत करता है, पसीना बहाता है, पूरे देश को अन्न पुराता है, उसके लिए आप उचित योजना नहीं बनाते। 6000 रुपए क्विंटल है, 6000 रुपए क्विंटल ही कपास का दाम आज भी हमको समर्थन मूल्य मिल रहा है, 2000 रुपए क्विंटल ही हमको आज गेहूं का समर्थन मूल्य मिल रहा है, जबकि गेहूं तो इतनी इंपॉर्टेंट चीज है कि उसको तो उसका तो दाम ज्यादा होना चाहिए, उसमें मेहनत ज्यादा लगती है। पर सरकारें जो है वो उद्योगपति, फैक्ट्रियों के मालिक, उनके प्रति समर्थन है उनका, उनको बढ़ावा देती है, उनके लिए योजना बनाती है, क्योंकि उद्योगपतियों से उनको पैसा मिलता है।
सर, 15 मई के पहले जिस तरीके से सहकारी समितियों में जो भी रासायनिक खाद उपलब्ध था वह पुराने दामों में मिलेगा या नए दामों में मिलेगा, इसके लिए शासन प्रशासन ने किस तरीके की गाइडलाइन जारी करना चाहिए, और किसानों के हित में यह कैसा कदम होगा कि पुराने दाम पर जो खाद समितियों के गोदाम में भरे हुए थे और वर्तमान जो भाव भी बढ़े हैं, तो किस तरीके से किसानों को सहूलत मिल सकती है इसको लेकर?
जो सहकारी समितियां है वो अर्धशासकीय होने के साथ साथ सरकार का नियंत्रण उस पर होता है। सरकार जो चाहेगी, सरकार जो समितियों को आदेश देगी, उस रेट में समिति को बेचना पड़ेगा। तो शासन का और सरकार का एक की ये जिम्मेदारी है कि उस किसानों तक वो जो खाद है वो जिस मूल्य में है, कम से कम मूल्य में किसानों तक पहुंचे। और यदि कोई समिति ऐसी गड़बड़ करती है, उसके लिए स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने, किसानों ने अपनी आवाज सरकार तक पहुंचाने चाहिए, और वो जिस प्राइस का, जो जिस रेट का माल है उसी रेट में किसानों तक पहुंचना चाहिए। ये जिम्मेदारी हम नेताओं की है, और नेताओं के साथ साथ जागरूक किसानों की भी है, जागरूक इंसान आम आदमी की भी है कि अपनी आवाज को शासन तक पहुंचाए। एक तो प्रकृति की मार किसानों पे है, कर्जे के बोझ तले दबा हुआ है, फसलों को उचित दाम नहीं मिलते, ऊपर से इस तरह से यदि गड़बड़ी होती है तो इसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन में बैठे हुए अधिकारियों की है। जो राजनेता, जो नेतागिरी करते हैं, उन लोगों की आवाज, आम व्यक्तियों की आवाज शासन तक पहुंचाए, उनकी जिम्मेदारी है।
जी सर, बीते वर्ष कोरोना काल के बाद में जिस तरीके से किसानों ने फसल बोई थी, उसके बाद भयंकर बाढ़ के कारण उनकी पूरी फसलें चौपट हो गई थी, खेतों में गाद आ गई और रेत का ढेर लग चुके थे, और जिस तरीके से किसानों ने अभी भी अपने खेत परिपक्व तरीके से तैयार नहीं कर पा रहे हैं, सरकार ने उनके खेत को लेकर क्या व्यवस्थाएं की जानी चाहिए, साथ ही उनकी जो फसलें बर्बाद हुई है अभी तक उन्हें कोई व्यवस्था नहीं हो पाई है, कोई आर्थिक सहायता उपलब्ध नहीं हो पाई है, सब क्या करना चाहिए?
जी, सरकार की जिम्मेदारी है और प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी फसल बीमा करवाते हैं, और जो हम लोगों ने फसल बीमा किया है, यदि हमारी फसल का नुकसान हुआ है, हमारे खेतों को नुकसान हुआ है, तो उसका उचित मुआवजा सरकार ने, शासन ने किसानों को देना चाहिए, शासन ने देना चाहिए, या जिन किसानों ने फसल का बीमा किया है उनको बीमा कंपनी के माध्यम से उनको मुआवजा उपलब्ध होना चाहिए। पर यह नहीं हो पाता। आम व्यक्ति, आम किसान, एक गरीब गांव का किसान जो पढ़ा लिखा नहीं है, जो सुदृढ़ नहीं है, हर व्यक्ति कोर्ट में नहीं जा सकता है न्याय के लिए, और हर छोटे छोटे बात के लिए वो कोर्ट कचहरी करता रहेगा, तो पूरा दिन पूरा समय किसानों का और आम व्यक्ति का कोर्ट कचहरी के चक्कर में जाएगा, वो अपने परिवार का पालन पोषण नहीं कर पाएगा। इसीलिए सरकारें होती है और जनप्रतिनिधि होते हैं और प्रशासन में बैठे हुए अधिकारी होते हैं। जो अधिकारी कलेक्टर है, एसडीएम है, तहसीलदार है, राजस्व विभाग के अधिकारी कर्मचारी है, पुलिस विभाग है, ये सारी व्यवस्था शासन इसलिए करता है कि आम व्यक्ति के हितों की रक्षा हो। पर रक्षक ही भक्षक बने हुए हैं, तो आम आदमी को न्याय कहां से मिले? इसके लिए हर व्यक्ति ने जागृत होना चाहिए। और जब सरकार चुनते हैं, जब हम लोग जनप्रतिनिधि चुनते हैं, वो ऐसा जनप्रतिनिधि चुने जो आम व्यक्ति के न्याय के लिए लड़े। जितने भी सरकार में नेता, मंत्री और अधिकारी बैठे हैं भ्रष्ट है, आम व्यक्ति के हितों के लिए न्याय नहीं बनाती, आम व्यक्ति के हितों की योजनाएं नहीं बनाती, बड़े लोगों का योजनाओं का लाभ मिले, अधिकारियों का भला हो, ऐसी नीतियां सरकार बनाती है, इसका पूर्जी और विरोध किसानों ने, आम व्यक्ति ने करना चाहिए और जनप्रतिनिधियों ने करना चाहिए। इसके लिए हर आम व्यक्ति को जागृत होना पड़ेगा। यदि उनको किसानी का फसल का मुआवजा चाहिए, उनके फसलों को उचित दाम चाहिए। हम लोग लीगल रूप से चाहते हैं कि हमें न्याय मिले, पर न्याय नहीं मिलता। इसके लिए आम व्यक्तियों की भी कमजोरी है कि वो गलत व्यक्तियों को सरकार तक पहुंचाते हैं, गलत जनप्रतिनिधि चुन के देते हैं और गलत प्रकार से सरकारें बनती है, उसका खामियाजा हमको भुगतना पड़ता है।
सर, कोरोना काल के कारण पूरे देश में कोरोना कर्फ्यू लगा हुआ है और अभी वर्तमान में किसानों की जो बोनी आने वाली है इसको लेकर खाद बीज की व्यवस्था अभी भी नहीं हो पाई है, तो इसके लिए किस तरह की व्यवस्था की जाए, दुकानों में उनकी बीज उपलब्ध हो सके और एक निश्चित मूल्य पर उपलब्ध हो सके, इसमें भी कालाबाजारी होने की संभावनाएं हैं, सर इसके लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए?
सहकारी समितियां गांव-गांव में है और जो वस्तु, जो खाद बीज सहकारी समितियों में उपलब्ध नहीं होता, जो किसान भाई बाहर से बाजार से खरीदना चाहते हैं, बाजार में भी एक उचित व्यवस्था हो कि किसानों के साथ में भ्रष्टाचार न हो, उनके साथ धोखाधड़ी न हो, उनको गलत बीज खाद न मिले, इसकी जिम्मेदारी खाद्य अधिकारी है। हमारे पास कृषि विभाग के लोग हैं जो खेत कृषि केंद्रों में इसका नियंत्रण रख सकते हैं। अधिकारी शासन के पास सारे अधिकारी और सारे कर्मचारी है, पर सारे लोग भ्रष्टाचार में लिप्त होने के कारण किसानों को न्याय नहीं मिल पाता। हमारे पास कृषि विभाग का पूरा अमला है, खाद्य विभाग का पूरा अमला है, पुलिस है। यदि ये सारे प्रशासन के लोग, ये अधिकारी कर्मचारी यदि सख्ती से नियम कानून से कोई चीज को यदि सही करना चाहे तो गलत करने की हिम्मत किसी की नहीं हो सकती है। पर हम लोग देखते हैं किसानों के साथ कितनी ठगी होती है, उनको गलत बीज दिया जाता है, उनको नकली खाद दिया जाता है और उनको जो कंपनी के जो प्राइस है उससे ज्यादा ऊंचे दामों में खाद बीज बेचा जाता है। इन सारे चीजों की हितों की रक्षा करने के लिए हमारे पास प्रशासन के अधिकारी है, इन्होंने अलर्ट रहना चाहिए और किसान के हितों की रक्षा करनी चाहिए।
जी सर, पूरे जिले में कोरोना कर्फ्यू लगा हुआ है कोरोना काल में और कई किसान सब्जी भाजी अपने खेतों में बोते हैं लेकिन बाजार ही बंद है, इसके कारण किसानों को अपनी फसल बाजार तक पहुंचा नहीं पा रहे हैं, उन्हें कई समस्याएं आ रही है। वे अब इतने मजबूर हो गए हैं कि उनको खेतों में ही उस फसलों को नष्ट करना पड़ रहा है, अपने पशुओं को खिलाना पड़ रहा है। इसके लिए क्या कदम उठाए जाए ताकि उनको भी अपनी सब्जी भाजी फसलों का दाम मिल सके?
योगी जी, कोरोना तो आपदा है, एक अचानक आई हुई एक ऐसी परिस्थिति है जिसको हम सबको सतर्क रह के इसका सामना करना पड़ेगा। प्रशासन भी अपनी व्यवस्था कर रहा है, प्रशासन भी चाहता है कि किसान या आम व्यक्ति किसी भी तरह की से गैर जिम्मेदाराना न बने, सतर्क रहे। फसल आज सबका नुकसान हो रहा है, खेती किसानी का भी नुकसान हो रहा, उद्योग का भी नुकसान हो रहा और हर एक व्यक्ति, चाहे वो कर्मचारी हो, अधिकारी हो, किसान हो, आम व्यक्ति हो, उद्योगपति हो, दुकानदार हो, सबका कहीं ना कहीं नुकसान हो रहा है। पर ये जो आपत्ति हम सब पे आई है, ये हम सबको मिलके और प्रशासन का हम सब लोगों को सहयोग करके इस विपत्ति से निकलना चाहिए। जान है तो जहान है। आज हो सकता है कि किसान का भी थोड़ा सा नुकसान इस कोरोना के कर्फ्यू में हो रहा हो, पर उसको सहन करना पड़ेगा क्योंकि उसके पीछे उसका परिवार है। यदि किसान सुरक्षित रहेगा तो उसका परिवार सुरक्षित रहेगा। ये बात तो सर्वविदित है कि सबको कहीं ना कहीं नुकसान हो रहा है, चाहे उद्योगपति हो उसको भी नुकसान हो रहा है, चाहे कोई छोटा व्यापारी हो, दुकानदार हो, उसको भी नुकसान हो रहा है। आम व्यक्तियों को, एक गरीब मजदूर है, वो भी कहीं मजदूरी करने बाहर नहीं जा पा रहा है, तो कहीं ना कहीं सबका नुकसान हुआ है। पर इन सारे नुकसानों से और इस सारे विपत्ति से हम सब लोग लड़के और हमको प्रशासन का कहीं ना कहीं सहयोग इस विपत्ति में करना पड़ेगा। और सारे लोग, प्रशासन भी हमारी कोई दुश्मन नहीं है, वो चाहती है कि सबका अच्छा हो इस बीमारी, क्योंकि हमारा माल बेचने से ज्यादा हम लोग सुरक्षित रहे, ये ज्यादा महत्व का है। यदि हम लोग बाहर जाके बीमार हो जाए, बाजार जाए, बाहर निकले, हम अपनी फसलों को बेचने के लिए जाए और बीमार, एक व्यक्ति घर का मुखिया बीमार हो जाए, घर में आए उसका परिवार फिर पीड़ित हो जाए, तो ये उस फसल से ज्यादा नुकसान होगा। इसलिए इस कोरोना के महामारी में तो मैं कहूंगा और सबसे निवेदन करूंगा कि सुरक्षित रहे, सतर्क रहे। आज थोड़ा सा हमारा नुकसान भले हो रहा है, पर ये नुकसान हम लोग सहन कर लेंगे और इसकी भरपाई हम लोग जिंदा रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे तो भविष्य में इसकी भरपाई हम लोग कर लेंगे। प्रशासन का बिल्कुल सहयोग करना चाहिए, पुलिस का सहयोग करना चाहिए, स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों का सहयोग करना चाहिए और जो अधिकारी हमको कुछ समझाते हैं, कुछ नियम बनाए, उसका पालन बिल्कुल करना चाहिए, तभी हम इस कोरोना के महामारी से बच पाएंगे।
जी सर। सर, विकास खंड सौसर में अभी भी मिट्टी परीक्षण केंद्र बंद है। सर, किसानों की जो मिट्टी परीक्षण है अभी भी नहीं हो पा रहे हैं, केंद्र कब तक खुलेगा और किसानों को इसका लाभ कब मिलेगा?
मैं जनपद सदस्य होने के नाते भी इस विषय में कृषि अधिकारी से चर्चा करूंगा, राजस्व विभाग के अधिकारी से चर्चा करूंगा और क्या इसमें शासन की ओर से गाइडलाइन है और क्यों वो केंद्र बंद है और यदि शुरू होने का है तो कब तक शुरू होने का है, इसकी मैं सारी जानकारी लेके आपको अवगत करूंगा और किसानों को भी अवगत करूंगा।
जी, ये थे संदीप जी, जिन्होंने मोबाइल वाने पर रासायनिक खादों के बढ़ते दाम हो चाहे किसानों पर कोरोना काल में बढ़ती महंगाई को लेकर मोबाइल वाने पर जानकारी साझा की। संदीप जी, मोबाइल वाने को समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
धन्यवाद योगेश जी।
छिंदवाड़ा वाले से आपका दोस्त योगेश।